करो मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, विकराल विनाश खड़ा आगे।
ओम शांति। सभी फ्रेश है ना? अभी चाय पीने के बाद तो और भी हो गए होंगे। भट्टी के सेकंड सेशन में हम सबके बीच में है आदरणीय ब्रह्मा कुमार ललित भाई इनानी जी। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आप व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और उनकी कंसर्न जो सिस्टर कंसर्न्स हैं उन सभी का लीगल मैटर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस आप सारा उसकी देखरेख करते हैं। आप शांतिवन में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां ही रहकर करते हैं, पर आपका अपना व्यवसाय, आप पार्टनर हैं इनानी एंड इनानी कंसल्टेंट, चार्टर्ड कंसल्टेंट्स के, और डायरेक्टर हैं मैनेजिंग इनानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के। आप उदयपुर के एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। आपका जो नेटिव है सालेरा, उदयपुर से कुछ किलोमीटर दूर है। आप सुना रहे थे मुझे अभी कि केवल 2200 से 2200 लोगों तक का छोटा सा गांव है, जहां से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बने। सबसे पहले उस गांव से चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बने और आज की तारीख में वहां से 25 ऐसे लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और कैसे बने वो सुना रहे थे, जो आज का विषय भी है, और उस विषय को लेकर आपने एक किताब भी लिखी है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज का विषय है सफल जीवन के लिए राजयोग, कैसे राजयोग स्पिरिचुअलिटी ने मदद की और कैसे आप जीवन में सफल होते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और आज भी बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं यूथ विंग से आपके परिचय में हूँ, बहुत ज्यादा उस रीति से नहीं था, लेकिन जब से आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सेवाएं कर रहे हैं तब से थोड़ा परिचय बढ़ गया है। लेकिन यूथ में आपने काफी इंटेंसिव सेवाएं की हैं, आप कमिटी के मेंबर हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप सेक्रेटरी भी हैं, और यूथ में अनेक प्रोजेक्ट्स आपने डिजाइन भी किए हैं, सेवाएं भी दी हैं अपनी, और आज भी वो अपनी सेवाएं देते रहते हैं। यंग हैं और इनोवेटिव हैं और कई प्रकार के रिसर्चेस वो अपने हिसाब से करते हैं, इसलिए कई बुक्स भी लिखी हैं, आपको पोइट्री का भी शौक है, वास्तु का भी शौक है और नेचुरोपैथी का भी शौक है, उसमें भी आपने एक आध बुक लिखी है, तो आज हम सबके बीच में आप शेयर करेंगे अपने अनुभव युक्त बोल सफल जीवन के लिए राजयोग। कैसे राजयोग हमें जीवन में कोई भी क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। आदरणीय ब्रह्म कुमार ललित भाई इनानी जी।
ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स राधा बहन जी, जो इन सब अति विशिष्ट नूरे रत्नों का दर्शन करने का लाभ मिला। पांडव भवन बाबा की कर्म भूमि में विशेष तपस्या का सुख जो मिलता है वो तो अद्भुत है। भारत में मुख्यतः दो प्रकार के शास्त्र हैं, एक है गीता, दूसरा है भागवत। गीता क्या है? गीता ज्ञान है, ज्ञान की बातें, जैसे थ्योरेटिकल कहते हैं ना, तो ज्ञान की बातें सारी गीता में है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारा गीता में बताया है। और भागवत क्या है? भागवत उसका प्रैक्टिकल स्वरूप कि परमात्मा के साथ का अनुभव जो भी हम जिंदगी में करते हैं उसका शास्त्र भागवत बना हुआ है। तो गीता आपने बहुत सुनी होगी इस भट्टी के दौरान, मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, जैसा बहन जी ने बताया कि कैसे परमात्मा के साथ से, परमात्मा से शक्ति लेके, जिसको हम राजयोग कहते हैं, उसके द्वारा हम जीवन की हर बात में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने इस 26 वर्षों के राजयोगी जीवन में इस प्रकार के बहुत अनुभव कराए हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े उसके पहले भगवान के साक्षात्कार की बहुत तीव्र इच्छा थी कि जिस भगवान को बचपन से याद करते हैं वो कहीं तो होगा, किसी रूप में तो होगा, और मैं अकेला ही याद नहीं कर रहा हूं, सारा विश्व याद कर रहा है उसको, तो वो आखिर है कहाँ, क्या है, मुझे कैसे भी करके उसका साक्षात्कार करना है। ये एक तीव्र इच्छा, और इतनी तीव्र इच्छा हुई कि मैं सीए कर रहा था, ये उसी पीरियड की बात है जब इधर सीए ज्वाइन किया और इधर ये इच्छा हो गई, और मन में गांठ बांध ली कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना ही है किसी भी शर्त पर। गुरु किया, तपस्या किया, 7 दिन मौन में रह के, कमरे में बंद रह के तपस्या किया, सब कुछ किया, जब नहीं हुआ साक्षात्कार तो फिर सोचा कि अभी सन्यासी बन जाए सब कुछ छोड़ के, तो वहां संभावना है, फिर तो उसकी तैयारी कर ली। सीए का एक ग्रुप क्लियर भी हो गया था तब तक में, पर सोचा अभी सब कुछ छोड़ के हिमालय में चला जाता। उसी समय किसी ने परिचय दिया कि आपके घर में, उस समय गुजरात में बड़ौदा एक प्लेस है, सिटी है, वहां मैं सीए कर रहा था, हमारे लौकिक संबंधी के वहां रह के। तो किसी ने कहा आपके घर के पास में गीता पाठशाला है तो आप वहां जाइए। मेरे पास क्या था कि मेरी बैग, जो ऑफिस बैग थी, उसमें गीता की एक बहुत बड़ी किताब, साधक संजीवनी राम सुखदास जी महाराज की लिखी हुई गीता प्रेस गोरखपुर की, वो मेरे साथ ही रहती थी। तो वो भाई ने देखा तो कहा कि आपके घर के पास में गीता पाठशाला है, आप वहां जाइए तो आपको मजा आएगा। तो हमने सोचा ये तो अच्छी बात है, तो मैं तो पहुंच गया वहां, तो छोटा सा कमरा था, 8-10 लोग बैठे थे, सामने एक भाई बैठा था, कुछ सुना रहा था और फोटो लगा था, तो हमने सोचा इनके गुरुजी है, तो साष्टांग प्रणाम किया और हम भी बैठ गए। फिर 5-10 मिनट में वो सत्संग पूरा हो गया उस समय। फिर मैं तो वो सब चले गए, मैं वहीं रुका। मैंने कहा क्या विधि है यहाँ, गीता कितनी बजे पढ़ने आऊं, क्या है, तो पूछने के लिए वो लास्ट में जो भाई बचा उसको मैंने पूछा कि भाई मुझे गीता पढ़ने आना है तो यहाँ आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप जरूर आइए, पर आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने गीता कई बार पढ़ी है, मुझे तो याद भी है, कोर्स क्या करना है इसमें। बोले नहीं ये थोड़ा नया ज्ञान है ना, इसलिए आपको कोर्स करना होगा 7 दिन का। मैंने सोचा शायद इनको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैंने गीता में 3-4 श्लोक उनको संस्कृत में सुना दिए। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो अच्छी बात है, आपको तो बहुत अच्छा गीता का नॉलेज है, लेकिन ये ज्ञान है ना थोड़ा नए प्रकार का है, इसलिए 7 दिन का कोर्स इसमें करना होता। तो मैंने कहा फीस क्या, क्योंकि कोर्स होता है तो फीस होती है, तो फीस। बोले नहीं कोई फीस नहीं है, आप बस आइए 1 घंटे के लिए, 8 बजे आइए, 8 से 9 आपका क्लास कराएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उस समय भी मैं 4 बजे 3:30-4 बजे उठता था, गुरु की माला मंत्र जपना होता था, वो करता था, वो उसी प्रकार की भक्ति मेरी चल रही थी। दूसरे दिन मैं गया तो उन्होंने कहा ये देखिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय में डिग्री दी जाती है, तो वहां लक्ष्मी नारायण का एक बड़ा मतलब 4-5 फीट का बड़ा फोटो लगा हुआ था, बहुत सुंदर फोटो लक्ष्मी नारायण। बोले ये डिग्री दी जाती है ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। अब वो भाई खुद मैरिड थे, डॉक्टर थे, मैरिड थे, उसके घर में पाठशाला चलती थी, तो वो मुझे पता था कि भाई ये मैरिड है, और लक्ष्मी नारायण भी मैरिड थे, क्यों मैरिड ही है उन लक्ष्मी नारायण भी। तो मैंने सोचा कि यहां जो भी संस्था में आता है, क्योंकि डिग्री वही देते हैं लक्ष्मी नारायण की, इसका मतलब मैरिज करना कंपल्सरी है यहां। तो मैंने भाई को पूछा, मैंने कहा भाई हम यहाँ कोर्स करेंगे तो मैरिज करना कंपल्सरी है यहाँ? तो वो थोड़ा मूंझ गए, बोले नहीं जो आपकी इच्छा हो ये वो। वो सोचे कि ये कुमार है, अभी कहूंगा कि नहीं मैरिज करना है तो भाग जाएगा, क्योंकि वो मेरे मन में क्या चल रहा था वो उनको पता नहीं था, तो वो कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा नहीं मुझे क्लियर बताओ आप कि यहाँ कंपल्सरी है या नहीं है। मैंने इसलिए पूछा उनको क्योंकि जो मैं भक्ति कर रहा था ना, तो भक्ति में आता है कि भाई परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी है। तो मैंने अपने गुरु के आश्रम में प्रतिज्ञा किया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और भक्ति में तो ये समझते हैं कि मैरिज के बाद तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन संभव नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी प्रतिज्ञा किया था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। अब मैंने ये प्रतिज्ञा की हुई थी और ये यहां मुझे लक्ष्मी नारायण बना रहे थे, तो मेरे लिए तो कन्फ्यूजन हो गया। तो फिर मैंने पूछा, फिर उन्होंने कहा कि देखो हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, शादी करना नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आपकी इच्छा हो तो करना, आपकी इच्छा नहीं हो तो नहीं करना, हम इसमें कुछ नहीं कहते हैं, हम तो जो ज्ञान है भगवान का वो आपको सुनाते हैं। बहुत होशियार थे डॉक्टर, अनुभवी थे साकार बाबा के समय से। तो मैंने कहा चलो करते हैं, कोर्स तो करते हैं। पहले दिन आत्मा का, दूसरे दिन परमात्मा का, अब ये कुछ अलग ही ज्ञान सुनावे। और मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े थे जो नॉर्मली घरों में नहीं होते हैं, वो भी मैंने पढ़े हुए थे, वशिष्ठ रामायण आदि आदि। अब इतना माथा खराब हो गया, भारी हो गया कि भाई सच्चाई क्या है, ये जो कह रहे हैं तर्क के हिसाब से ये ठीक है, 2+2=4 हो रहा है जो ये बता रहे हैं, लेकिन मैंने जो इतने वर्षों तक पढ़ा उसका क्या, जो इतना सब पढ़ा था, मतलब बहुत ज्यादा तूफान चलने लगा माइंड में कि क्या किया जाए। फिर भी मैंने हिम्मत रखी चलो कोर्स तो करते हैं, फिर देखा जाएगा, भक्ति तो चालू ही है अपनी। तो 5वें दिन जब सीढ़ी का लेसन हुआ, तो सीढ़ी के लेसन में ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैसे हम आत्माएं 84 जन्म लेते हैं इस धरती पर आकर, और पूरा क्लियर हो गया ज्ञान एकदम। और उस दिन मेरी भक्ति ऐसे पूरी हो गई कि जैसे इस जन्म में मैंने भक्ति की नहीं हो, बिल्कुल पूरी हो गई। और फिर बाबा और मैं, इतना ही मन में फिक्स हो गया कि बाबा और मैं, यही परमात्मा पिता जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैं हिमालय में जाने के लिए तैयारी कर रहा था वो स्वयं आया हुआ है, वो साक्षात आया हुआ है, ये पूरा अच्छी तरह से मुझे विश्वास हो गया। फिर 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ, 8वें दिन उन्होंने मुझे सामने बुलाया मुरली के बाद और कहा कि अपना परिचय दीजिए क्लास में। 10-12 भाई बहने बैठे थे तो मैंने कहा शरीर का नाम ललित है, मतलब वो नॉलेज क्लियर हो गया कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, इस शरीर का मालिक हूं, वो सारा स्पष्ट था। तो मैंने कहा शरीर का नाम ललित है और ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये आप यहां बैठे हैं ना इस वरदानी भूमि पर, तो इस चीज को आप यहां से पक्का करके जाना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम नॉर्मली सभी बोल देते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना ये जीवन का लक्ष्य है, पर क्या हमको विश्वास है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे? बहुत अंदर से गहराई में विश्वास है, उतना ही विश्वास कि आप यहां से जाएंगे तो डाइनिंग में आपको भोजन मिलेगा, वो आपको विश्वास है कि ये क्लास पूरा होगा आप डाइनिंग में जाएंगे आपको भोजन मिलेगा, वो विश्वास है आप, उतना ही विश्वास इसमें है कि ये नए जन्म में हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो विश्वास होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैंने कहा सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ जो उनका सबसे प्रिय सखा है, जो सारा दिन उनके साथ रहता है, वो पार्ट मैं प्ले करूंगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं ना मतलब पता नहीं क्यों मुझे बस वो एक टचिंग हुई और उस दिन से लेके आज तक मेरे सामने वही मेरा लक्ष्य है और वही मुझे खींच रहा है जैसे, तो वो बोला और उसके बाद चले। अभी सीए कर रहे थे तो इच्छा ही नहीं हुई, अभी जब भगवान मिल गया जिसको ढूंढने के लिए मैं सब कुछ छोड़ के हिमालय में जा रहा था, वो साक्षात मिल गया, अभी पढ़ के क्या करने का। मैंने कहा छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई नहीं पढ़नी अभी, हमको नहीं करना है। तो हमारी बहन जी ने कहा, निमित इंचार्ज बहन जी ने, कि देखो सीए सब नहीं पढ़ सकते हैं, तो बाकी की सेवा तो सब कर सकेंगे लेकिन जो सीए की सेवा होगी ना वो सीए ही कर सकता है, इसलिए आप ये नहीं समझो कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप बाबा की सेवा में ही ये समय को इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसा समझ के भी आप सीए कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी 2-3 आदत शुरू से रही ज्ञान में आया तब से, एक तो निमित इंचार्ज बहन जो होती है ना उसको पूछकर ही हर काम करने का, जहां भी रहा निमित को पूछकर करने का जो भी करना है, और निमित ने जो बोल दिया वो बाबा ने बोल दिया ऐसा समझ के करना है, एक तो वो मेरा जीवन का एक लक्ष्य रहा। दूसरा जो भी काम किसी ने भी सौंपा, चाहे सेंटर पर, घर पर, ऑफिस में, कहीं भी, तो बाबा के रूम में जाके बाबा को बता देने का, ऐसे नहीं बाबा का फोटो है इसलिए नहीं, जैसे आप बैठे हैं ना सामने ऐसे बाबा बैठा है और मैं बाबा से बात कर रहा हूं और बाबा को बोल देना बाबा ये एक सेवा मिली है, ये एक कार्य मिला है। तो जब बहन जी ने कहा कि सीए करो तो मैं बाबा के रूम में गया और बाबा को बोला कि बाबा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे कोई नाम मान शान नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए थे और आप मिल गए, पर बहन जी कह रहे हैं कि सीए करो आगे सेवा में काम लगेगी डिग्री, तो अगर ये डिग्री से सेवा में कुछ काम लगने वाला हो तो आप मुझे सीए बना देना, मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप मुझे सीए बना देना, ये बाबा को मैंने बोल दिया। और उसके बाद सीए के एग्जाम्स दिए थे तो मैं जॉब भी करता था, फिर सेंटर पर सेवाएं भी करता था, मुरली भी सुनना डेली, और उसके बाद पढ़ना। पढ़ने में क्या करता था कि एक छोटे से रूम में हम दो कजिन, मेरा एक कजिन भी सीए कर रहा था, तो हम दोनों साथ में रहते थे, तो वो दिन में 12 से 14 घंटा स्टडी करता था, बैठ के नोट्स बनाता था, ये सब करता था। मैं तो ये सब करने के बाद आता रात को वो किताब हाथ में लेके बेड पर सोया सोया पढ़ता, कब नींद आ गई, किताब साइड में गिर गई, वो ऐसे मेरा सीए का स्टडी चलता था सब। तो मेरा वो कजिन मेरे को बोले कि ललित मैं तुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि तू सीए पास नहीं हो सकता है, कि यहां मैं 12-12 14-14 घंटे बैठ के स्टडी करता हूं, सब कहता हूँ, और तू तो आया कब, सो गया क्या, ऐसे सीए होता है क्या? देखो जो भगवान को मंजूर है, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था, मैं बाबा का कार्य जो बाबा ने कहा वो मुझे करने का, और बाकी मैं निश्चिंत था। ड्रामा अनुसार मैं तो एक के बाद एक ग्रुप क्लियर होता गया, सीए हो गया, और मेरा वो कजिन मेरे 3 साल बाद सीए हुआ, वो उसके अटेम्प्ट इतने लगे वो 3 साल बाद हुआ, और मैं एक के बाद एक जो है, हाँ मेरे कोई बहुत बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए कि मेरिट में आ गया है, वो नहीं, लेकिन पासिंग मार्क आ गए, सीए हो गया, डिग्री जो चाहिए थी वो मिल गई, और वो भाई को हमारे उसको 3 साल और लग गए, उसके बाद सब फाइनल में अटक गया वो। खैर ये तो बाबा का जैसे एक प्रत्यक्षता शुरू हुई, लेकिन क्या हुआ हमारे लौकिक परिवार में हमारा विरोध शुरू हो गया, क्योंकि कोई ब्रह्मा कुमारी को जानता नहीं था, पहले तो मेरी तरह कोई नहीं जानता था, और जब जाना तो लोगों ने उल्टा सुनाया सब उनको, तो वही मन में भरा था, और मैं मेरे परिवार में 3री पीढ़ी पर मेरा जन्म हुआ था, हमारे दादाजी को गोद रखा था, हमारे पिताजी को गोद रखा था, और 3री पीढ़ी पर सबसे बड़ा बच्चा मैं 4 भाई बहनों में, तो उनको बड़ी आशाएं थी मेरे से, तो मैरिज करेंगे, ये होगा वो होगा, सब बड़ी आशाएं थी, और मैंने तो ये रास्ता ले लिया, तो बहुत विरोध, इतना विरोध कि जब गांव जाता था, मैं अहमदाबाद में जॉब कर रहा था, वहीं प्रैक्टिस कर रहा था, तो गांव जाता था कभी, तो गांव में सभा लग जाती थी समझाने वालों की, तो एक बार पिताजी ने बोला कि अभी बोल तेरी फाइनल इच्छा क्या है, मैंने कहा बस पवित्र रहेंगे और जैसे आप लोगों की सेवा करेंगे, तो कहा आज के बाद इस गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा, इतना तक विरोध कि बिल्कुल कि पैर रखा तो पैर काट दूंगा, लेकिन हम हंसते थे, हमारे मन में खुशी रहती थी, हमको कोई ये नहीं था कि ये विरोध कर रहे हैं, यही था कि बाबा का परिचय नहीं है इनको, जिस दिन ये इनको परमात्मा का परिचय मिल जाएगा, परमात्मा को याद करेंगे ये भी, उस दिन इनको भी खुशी होगी। एक बार वो मुझे एक हमारे लौकिक जाति जो होती है ना उसके गुरु जी है बहुत फेमस थे, तो उनके पास ले गए, मेरे को बताया नहीं, मेरे को ऐसे चलो मेरे साथ, माताजी पिताजी दोनों थे तो मैं साथ में गया, तो उनको ये था कि गुरुजी से शादी के लिए कहलवाएंगे कि भाई ये शादी कर ले, तो गुरुजी से कहलवाएंगे तो ये मान जाएगा तो कर लेंगे, तो वहां गए, तो उस समय उनका सत्संग पूरा हुआ था, वो रूम में गए हुए थे, तो हम भी रूम में गए उनके, वो सामने बैठे थे, वो अनार खा रहे थे चम्मच से कटोरी में लेके खा रहे थे, तो सब नीचे बैठे, हमने भी प्रणाम किया बैठ गए, तो एक रिलेटिव जो हमको ले गए थे उन्होंने कहा कि ये फलाने गांव से आए हैं, ये इनका लड़का है शादी नहीं कर रहा है, तो आपसे मिलवाने लाए, आप कुछ आशीर्वाद दो कृपा करो तो शादी कर ले। तो उन्होंने मेरे सामने देखा और मुझे पूछा कि क्या नाम है आपका, तो मैंने कहा शरीर का नाम ललित है। अब जैसे ही मैंने कहा शरीर का नाम ललित है, वो कटोरी उन्होंने नीचे रख दी, उन्होंने सामने वहां टेबल, क्योंकि आज दिन तक ऐसा जवाब तो किसी ने दिया ही नहीं उनको कि ये है, तो रख दिया। क्या करते हो? मैंने कहा ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का हम अभ्यास करते हैं। अच्छा, उनकी आंखें में चमक आ गई, ब्रह्मा कुमारीज में, बहुत अच्छा, आप लोगों का जीवन तो बहुत अच्छा है, तपस्वी जीवन है, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत निर्मल जीवन है आपका। मेरा भी आबू रोड में सप्ता जी का कार्यक्रम था, दादी जी आए, मेरा स्वागत किया, मुझे शॉल ओढ़ाई, आप लोगों का तो बहुत सुंदर जीवन है, ऐसी मेरी महिमा करने लगे बहुत। तो पिताजी को लगा ये ट्रेन कोई दूसरे ट्रैक पर जा रही है, और लाए थे किसके लिए और जा कहां रही है, तो उन्होंने कहा कि ये शादी नहीं कर रहा, घर में सबसे बड़ा है, हमारे परेशानी हो रही है, शादी नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पिताजी को कहा अच्छा ये बताओ कि इसमें अवगुण कितने हैं, तो पिताजी ने कहा कि नहीं अवगुण तो नहीं है, कि अच्छा इसके कितने, इसके जो दोस्त है उनमें से कितने में इसके जितने गुण है, तो पिताजी ने कहा कि नहीं गुण तो बहुत है इसमें, क्योंकि हमने और कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया उनको, उनको हर प्रकार से हम मदद करते, सेवा करते, निर्माणता से चलते, सब कुछ करते थे। इसलिए उनके पास और बोलने का कोई पॉइंट नहीं था मैरिज के अलावा। तो बोले नहीं, गुण तो बहुत है इसमें। तो फिर वो संत जी ने कहा कि देखो, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके घर में योगी बच्चा जन्मा है, फिर भी आपके घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है। योगी तो उड़ते पंछी होते हैं, ये अगर चला जाता घर छोड़ के आप क्या करते? ये तो पढ़ा लिखा है, आज ये कमा भी सकता, कहीं भी जाके कमा सकता है ये, तो आप क्या करते ये छोड़ के चला जाता? तो ये तो आपके घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है, इससे बड़ा आपका सौभाग्य क्या हो सकता है। और फिर जो उन्होंने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि देखो, मैं अपना घर छोड़ के भाग के आया हूं। संत ने अपने लिए कहा कि मैं घर छोड़ के भाग के आया हूं और आप लोग मेरी पूजा कर रहे हो, करते हो कि नहीं? आप लोग मेरी पूजा कर रहे हो, तो ये तो आपके घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है, इतने भाग्यशाली हो आप, ऐसा करके उनको पिताजी को समझाया उन्होंने। और फिर कहा कि मुझे कहा कि अच्छा, आज आप यहां रहेंगे हमारे साथ? मैंने कहा रह जाएंगे। पिताजी बोले नहीं नहीं, थोड़ा जरूरी काम है, हमको ले जाना है, ऐसा करके फिर वो ले गए वहां से। लेकिन पिताजी का स्वभाव हमारा थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव था, हमारे साथ वो वेवलेंथ सेट नहीं होती थी, बहुत गुस्सा करते थे हमारे। तो मेरे से छोटी दो बहनें हैं, उससे एक छोटा भाई है। तो मेरे से जो इमीडिएट छोटी बहन थी ना, उसकी मैरिज तो उन्होंने करवा ली, क्योंकि ज्ञान में तो कोई थे नहीं, तो उसकी मैरिज उन्होंने करवाई जब मैं सीए कर रहा था। अब मेरी नौकरी लग चुकी थी, तो पिताजी ने वो उससे छोटी बहन के लिए भी उन्होंने रिश्ते ढूंढे, लेकिन कहीं सेट नहीं हुआ। 5-7 जगह गए होंगे तो सेट नहीं हुआ, तो उनको गुस्सा आया, मेरे पर गुस्सा निकाला। तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं कर रहा है, इसलिए इसके लिए लड़का ढूंढना और इसके शादी का टोटल खर्च करना वो तेरे ऊपर है। एक की मैंने करवा दी, अभी इसकी तेरे ऊपर है। आपने शायद सुना है, नहीं सुना है, गुजरात में तो विशेष से कहते हैं कि कृष्ण ने कैसे नरसिंह मेहता का जो है वो मायरा भरा था, और वो ऐसी पूरी कहानी बहुत अच्छी आती है उसकी। तो हाँ, वो माँ मेरू वो कहते हैं कि कैसे नरसिंह मेहता एक बहुत संत वो थे, उनके भक्त थे, और उनकी हर इच्छा कैसे भगवान ने पूरी की। तो वो तो की या नहीं की मुझे नहीं पता, भक्ति का वो है, लेकिन मेरे जीवन में तो कैसे इस राजयोग के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा कैसे कर्म पूरे हुए। तो जब पिताजी ने ये बोला तो मैं बाबा के रूम में गया, जैसा मैं हर बार करता हूँ, और बाबा को जो के बोला, बाबा पिताजी ने बोला है बहन के लिए लड़का ढूंढना है और शादी का खर्च करना है, अब आप देख लेना जैसे भी कराना हो। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, तो ज्ञान में आने के बाद बाबा से एक एग्रीमेंट साइन किया कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा और मेरा जो काम है वो आप कर लेना। ये एक सिंपल एग्रीमेंट बाबा के साथ साइन कर लिया। तो जो भी काम होता था वो बाबा को बता देने का, बाबा आप करो। और उसके बाद मैं फिर याद नहीं दिलाता बाबा को कि भाई कहां तक पहुंचा, हुआ कि नहीं, वो नहीं। अपन कोई मनुष्य को कोई काम सौंपते हैं तो क्या होता है, चलो उसको बुरा नहीं लग जाए तो इनडायरेक्ट पूछते हैं, ठीक चल रहा है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, हो जाएगा ना टाइम पर, कुछ मदद चाहिए तो बताओ, ऐसे करके हम इनडायरेक्ट पूछते हैं उसको। लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो इंक्वायरी करते रहते हैं। भगवान को एक बार जब सौंप दिया उसके बाद उसको याद दिलाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो मैंने बता दिया बाबा को। फिर मैं जॉब कर रहा था तो मुझे पहली बार मधुवन से, यहां आबू से निमंत्रण आया सेंटर पर कि ललित भाई अगर 15-20 दिन ऑडिट की सेवा में आ सके तो आवे इस तारीख को। तो बहन जी ने मुझे पूछा कि ललित भाई मधुवन से निमंत्रण आया है ऑडिट सेवा का, आप जाएंगे? मैंने कहा बहन जी ये तो लॉटरी है मेरे लिए कि मधुवन में, और वो भी ऑडिट की सेवा जो मेरा फील्ड है उसकी सेवा, तो मैं तो जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो बहन जी ने जवाब लिख दिया कि हाँ आएंगे। मैं ऑफिस गया और मेरे बॉस को बोला कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किसके लिए चाहिए? मैंने कहा ऐसे मुझे सेवा में जाना है। बोले नहीं मिलेगी छुट्टी आपको, कि आप मैनेजर की पोस्ट पर हो, इतनी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, 15 दिन ऐसे सेवा में जाना है, ऐसे थोड़ी छुट्टी मिलेगी। मैंने कहा ये मेरे लिए एक लॉटरी है, मेरे जीवन का बहुत बड़ा अवसर है और मुझे जाना है। बोले हम आपको छुट्टी नहीं देंगे, आपको 2-3 दिन के लिए जाना है तो जाइए, नहीं देंगे। मतलब मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, वो नहीं माने। मैं अपने चैम्बर में गया, रेजिग्नेशन लेटर लिखा और वो इस्तीफा लाके उसी समय सौंप दिया बॉस को, ये मेरा इस्तीफा, मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूं। वो मेरे सामने देखने लगे कि तू नौकरी छोड़ रहा है, पागल हो गया है, आज के समय में इतनी अच्छी नौकरी कहां मिलेगी। ये 97-98 की बात है कि उस समय इतनी नौकरियां नहीं थी, ऐसी नौकरी कहां मिलेगी तेरे को। मैंने कहा मिल जाएगी, आप चिंता नहीं करो, आप मुझे छुट्टी दो। तो वो वैसे फ्रेंड था, अच्छा था, तो बोले ऐसा कर, या तो तेरे को नौकरी मिल गई होगी और तू बहाना करके वहां ज्वाइन करने जा रहा होगा, सेवा का बहाना कर रहा। मैंने कहा मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है, लेकिन मिल जाएगी। बोले तू ऐसा कर, पहले नौकरी ढूंढ ले, फिर मैं तेरा इस्तीफा लेता हूं, क्योंकि अगर तू पहले छोड़ दिया ना तो फिर बार्गेन नहीं कर सकता है तू, फिर तू जैसी होगी वैसी ज्वाइन कर लेगा, इसके अच्छा पहले नौकरी ढूंढ ले। मैंने कहा नहीं, आप कोई चिंता नहीं करो मेरी, आप तो ये इस्तीफा आज मंजूर करो और मुझे फ्री करो, आप मेरी बिल्कुल चिंता नहीं करो। ठीक है, उसने मान लिया, इस्तीफा मंजूर हो गया, मैं मधुबन आ गया, 15-20 दिन यहां सेवा किया, फिर वापिस अहमदाबाद गया। अब मैं किराए के कमरे में रहता था तो उसका किराया भी हर महीने देना होता था, बैंक बैलेंस मेरा जीरो ही रहता था, जो कमाया वो खाया, सेवा में यूज किया, घर वालों को दिया, मतलब बैंक बैलेंस जीरो, और नौकरी भी चली गई, और बहन की शादी का खर्चा तो करना ही था, वो तो मामला खड़ा था, वो पोजीशन में मैं था उस समय। तो फिर मैंने बहन जी को कहा कि बहन जी मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं अहमदाबाद में कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लूं, या मैं कहीं विदेश में नौकरी के लिए ट्राई करूं, या अपना खुद का सीए का प्रैक्टिस शुरू करूं अहमदाबाद में, आप जैसा कहें। तो बहन जी ने मुझे सोच के कहा कि अपना खुद का सीए का प्रैक्टिस चालू करो। मैंने कहा ठीक है। अब बहन जी ने तो बोल दिया बोलने को, लेकिन सीए का प्रैक्टिस चालू करना हो तो एक ऑफिस भी चाहिए, उसमें फर्नीचर करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, और उसके बाद ये सब करने के बाद भी कोई क्लाइंट भी तो होना चाहिए जिसका ऑडिट करें हम, जिसका काम लेवे। मैं तो नया था अहमदाबाद में, तो कोई मेरा इतना परिचय भी नहीं था। पर बहन जी ने बोला, मतलब बाबा ने बोला, ये मैंने इस ज्ञान मार्ग में पहले से रखा कि बहन जी ने बोला मतलब बाबा ने बोला। तो मैंने जिस कमरे में मैं किराए रहता था विजिटिंग कार्ड छपाया उसी एड्रेस का, वही ऑफिस भी हो गया मेरा, और अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई मैंने सीए का प्रैक्टिस शुरू किया है, किसी को कुछ काम हो तो बताना, बस इतना ही किया। अब देखिए, भक्ति में भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान हजार हाथ वाला है, कहते हैं ना, हजार हाथ वाला भगवान है, लेकिन अनुभव कोई कोई ही कर पाते हैं, लेकिन हम तो यहाँ भगवान का प्रैक्टिकल साथ में रहते हैं, तो ये अनुभव करने का समय है हमारा संगम। तो मुझे 20 डेज, अभी वो प्रैक्टिस शुरू किए को 20 डेज ही हुआ था, और मुझे जो वर्क मिला वो इतना वर्क मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर हो जाता था, उतना काम मुझे 20 डेज में ही मिल गया। अब बाबा को कितना थैंक्स करें, क्योंकि लोगों को तो एक एक दो दो साल तक तो केवल खर्चे निकलते थे, मेरा तो वही ऑफिस, घर जहां रहता था वही ऑफिस हो गया, और एक साल की सैलरी के बराबर मुझे काम मिल गया पूरा। मैं थैंक्स कर रहा था बाबा का कि कमाल है बाबा आपकी, तो आपके काम करने की रीत नीति न्यारी है। फिर अभी 10 दिन और निकला, मतलब 1 महीना हुआ, और अहमदाबाद का एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरे पहचान वाला था वो सामने से मेरे पास आया और मुझे कहा कि ललित भाई आपने प्रैक्टिस शुरू किया है। मैंने कहा हाँ। बोले अकेले हैं, पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है? मैंने कहा प्रोप्राइटरशिप है। तो क्या आज 11 बजे आप मेरी ऑफिस आना? ठीक है। मैं 11 बजे उनकी ऑफिस गया। उन्होंने कहा देखो मेरी एज हो रही है अभी, मेरे पास बहुत फाइलें हैं, बहुत काम पड़ा है, तो आप चाहें तो आप मेरे पार्टनर बन सकते हैं, मैं आपको इतना % शेयर दूंगा। अब कोई पुरानी फर्म में पार्टनर बनना हो तो उसको गुडविल का पैसा देना पड़ता है तो वो पार्टनर बनाता है, हमारे पास तो कोई पैसा था नहीं, रकम तो थी नहीं, तो मैंने कहा कि भाई साहब आपकी बात तो ठीक है लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है आपको कैपिटल देने के लिए, गुडविल देने के लिए। बोले उसकी क्या जरूरत है, ये मेरा ऑफिस है, ये टेबल चेयर, आप तो बैठिए काम शुरू कीजिए, इसी महीने से मैं आपको इतना परसेंट शेयर दूंगा। मैंने कहा ठीक है मैं आपको शाम तक बताता हूं। मैं फिर बहन जी के पास गया, बहन जी को पूछा बहन जी ऐसे ऑफर है वो पार्टनरशिप का तो क्या करूं, तो बहन जी बोले आप ज्वाइन कर लो। मैंने उनको बताया ठीक है मैं ज्वाइन कर रहा। अब एक महीने में मुझे अहमदाबाद की एक पुरानी प्रतिष्ठित फर्म में पार्टनरशिप में ले लिया, ऑफिस मिल गया, फर्निश्ड ऑफिस मिल गया, बहुत बड़ा क्लाइंटल मिल गया और सब कुछ सेट हो गया एक ही महीने में। इतना अच्छा बाबा ने सब सेट कर दिया। अब जिस महीने में मैंने वहां पार्टनरशिप ज्वाइन की उस महीने में वहां एक नई इनकम शुरू हुई, उसी महीने से एक नया सोर्स ऑफ इनकम शुरू हुआ और वो इनकम इतनी अच्छी थी कि मेरा शेयर जो था वो भी मुझे बहुत अच्छी रकम मिलती हर महीने, बहुत अच्छी रकम हर महीने मिलनी शुरू हो गई और वो रकम मैं इकट्ठी करने लगा बहन की शादी के लिए। तो 8-9 महीने में बहन की शादी में खर्चा करना हो उतनी रकम इकट्ठी हो गई, जो मुझे नौकरी करता तो 5 साल तक इकट्ठी नहीं होती, वो केवल 8-9 महीने में इकट्ठी हो गई। बाबा ने नौकरी छुड़ा के रोड पे लाके ऑफिस में बिठा के वो 8-9 महीने में इकट्ठी करवा दी। और संयोग से एक बहुत अच्छा फैमिली भी मिल गया जिनका हमारा कोई परिचय नहीं था, बहुत दूर रहते थे लेकिन किसी के द्वारा उनका परिचय हुआ और मिल गया, लड़का बहुत अच्छा था और फटाफट जो है वो सारी रस्में पूरी हुई और शादी भी हो गई। बहुत अच्छी तरह से शादी करा दी बहन की, गांव वाले सब आश्चर्य करे, घर वाले खास तो हमारे पिताजी आश्चर्य करे कि इसका तो नौकरी भी छूट गया, इसके पास कुछ पैसा भी नहीं था, इतना पैसा ये लाया कहां से, लोन लिया या क्या किया इसने, क्या कहां से ये पैसा लेके आया इतना सब। तो बहुत अच्छी शादी हो गई। लेकिन कमाल अब देखो, जब शादी पूरी हुई तो वो लड़के के पिताजी ने हमारे पिताजी को क्या बोला कि देखिए अपना कोई परिचय नहीं था फिर भी आपकी लड़की को हम ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे पता है, ये आपका लड़का जो ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, तो हम ये सोचे कि जिसके घर में इतना अच्छा संस्कारी लड़का है उसकी बहन भी कितनी अच्छी संस्कारी होगी जो हमारे घर को संभालेगी, इसलिए आपकी लड़की को हम लेके जा रहे थे। पिताजी ने क्या बोला था, तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करेगा। और बाबा ने जवाब क्या दिलवाया कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए इसकी बहन से कुछ शादी हुई है। देखिए भगवान का काम करने का पूरा तरीका ही अलग होता है। मैं तो जब भक्ति में था ना तब भी मैंने अपना आपको भगवान को समर्पित कर दिया था, गीता के एक श्लोक के आधार पर। गीता का वो एक श्लोक मुझे इतना पसंद आया, इतना दिल में बैठ गया मेरे कि मैंने अपना जीवन भगवान को दे दिया। वो श्लोक है, अनन्यस चिंतयंतो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, भगवान कह रहे कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, प्राप्ति की रक्षा करना। वो भगवान क्या कह रहा है, मैं वहन करता हूं, मैं करवाता हूं वो भी नहीं कह रहा है कि मैं किसी के द्वारा करवाता हूं वो भी नहीं, मैं खुद करता हूं। तो मैंने कहा जब भगवान इतनी गारंटी ले रहा हो, शर्त तो मामूली सी रखी है, अनन्य चिंतयंतो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना, ये इतनी शर्त है बस। भगवान की, आप सब यहां तपस्या के लिए आए हैं, ज्ञान में और डेप्थ के लिए आए हैं, तो भगवान की एक ही शर्त है, आप समझ लेना, अनन्यस चिंतयंतो माम, कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, एक बाबा दूसरा न कोई, केवल ये जो जिसके मन में पक्का है उसकी समस्त जवाबदारी भगवान के ऊपर है। तो ये तो भक्ति में ही मैंने ये समझ के जीवन समर्पित कर दिया था और जब बाबा मिल गया तब तो और ही क्लियर था, सब कुछ क्लियर था फिर तो सामने। तो ऐसे बाबा को पूरा जीवन समर्पित किया और बाबा ने हर स्टेप पर हमको मदद किया। जिस कमरे में मैं किराए पर रहता था वो अपने एक बीके भाई का मकान था, नीचे वो भाई था, उसका ऊपर उसकी बहन का पोर्शन था। तो वो बहन गांव में रहती थी, तो वो भाई ने मुझे बताया कि भाई उस बहन का ग्रैंड सन का कॉलेज में एडमिशन हो गया अहमदाबाद में और 15 दिन बाद वो यहां पर सामान लेके शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको ये रूम खाली करना पड़ेगा। 15 दिन एडवांस में उन्होंने मुझे बता दिया कि ये रूम आपको खाली करना पड़ेगा, वो उसका ग्रैंड सन कॉलेज के लिए आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा के रूम में गया और बाबा को बोला बाबा कमरा खाली करना है, आप कहीं देख लेना। मैं निश्चिंत उसको सौंप दिया, फिर मैं तो निश्चिंत हो गया। तो अब मैं तो कोई एक भी मकान देखने नहीं गया, कहीं भी मैं कोई मकान देखने नहीं गया, कुछ भी नहीं देखा। वो भाई बीके भाई था तो उसको थोड़ा मन में था, उसने एक दो मकान देखे लेकिन पसंद नहीं आए तो वो नहीं लिया। लास्ट 14वां दिन था तो मैं मुरली क्लास में गया, मुरली सुन के नीचे उतर रहा था, जैसे यहाँ सीढ़ियां उतरते हैं ना वैसे ही सेंटर में सीढ़ी उतर के नीचे जाना होता है, फर्स्ट फ्लोर पे मुरली क्लास था, हॉल था। तो मैं सीढ़ी उतर के नीचे गया तो बहन जी ने मुझे पूछा कि ललित भाई आपको मकान शिफ्ट करना है, कमरा शिफ्ट करना है? तो मैंने कहा जी बहन जी शिफ्ट करना है। बोले कब करना है? मैंने कहा आज ही करना है। तो कहीं देखा है? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा है। मेरे को कोई टेंशन भी नहीं था, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा था। वो हंसने लगे कि कमरा शिफ्ट करना है, आज ही करना है, कहीं देखा भी नहीं है और टेंशन भी नहीं है। तो भाई ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज तो है नहीं कि अभी गए 1000 रुपया लेके और आप लेके आ गए, ये तो ढूंढना पड़ता है तब कहीं मिलता है जाके। वो हंसते हंसते अंदर गए, अंदर से एक किचन लेके आए जिसमें 8-10 चाबियां थी। वो चाबियां लाके मेरे हाथ में रखी कि ललित भाई ये पूरा मकान है, 3 मंजिला, 8-10 कमरे हैं, खाली है पूरा, आप इसको संभालो। गायत्री बहन वो जो हॉस्टल थी ना कन्याओं की, वो पूरा खाली था, तो वो मुझे मकान दे। मुझे कितना चाहिए था? एक कमरा चाहिए था। और बाबा ने क्या दिया? पूरा 8-10 कमरों का बंगला पूरा खाली पड़ा था, वो दे दिया कि आप वो संभालो। लेकिन कब दिया? हैं? लास्ट दिन। 95% टाइम पास हो गया उसके बाद दिया, उसके पहले नहीं, उसके पहले कुछ भी नहीं। वो उसके पहले हमारे निश्चय की परीक्षा ले रहा था, उसका निश्चय की परीक्षा लास्ट मोमेंट पे वो देता है। ये उसका फॉर्मूला ही ये है, वो लास्ट मोमेंट पर ही देता है। और कोई भी प्रॉब्लम है ना, हम क्या सोचते हैं, कोई हमारे सामने बात आई, कोई समस्या आई, चैलेंज आया, कुछ परिस्थिति आई, हम ऐसा करेंगे, अच्छा चलो ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ये भी नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे, ऐसे मन में चलता रहता है, ABCD हम ऑप्शंस बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। लेकिन भगवान जो है ना, अगर हम भगवान को सौंप देते हैं ना वही काम, तो वो ई ऑप्शन लेके आता है, ABCD साइड में वो ई लेके आता है जो हमने सोचा भी नहीं, और इतना इजी कि हमको वंडर लगता है, अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और ये ऐसा क्या कितना इजीली हो गया। लेकिन होता लास्ट मोमेंट में है, जब पूरी परीक्षा हो जाए तब वो होता है, तब तक हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। एक एक गांव में एक महाराज कथा सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे तो जोश जोश में सुनाते हैं महाराज कि अरे अगर आप पेड़ से नीचे गिरेंगे, नीचे तलवार भी होगी, पर आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान वहां भी आपको बचा लेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे कथा अच्छी तरह सुनाई उन्होंने। कथा पूरी हुई, सब अपने अपने घर गए, वो संत जी भी शाम को नहाने के लिए नदी पर जा रहे थे, नदी पर जा रहे थे तो देखा दूर कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा, दूर से दिखाई दिया, तो नजदीक गए तो देखा एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा, नीचे तलवार थी खड़ी, ऐसे तलवार खड़ी की हुई थी, फिर नीचे उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है तो उसको उस बुलाए कि भाई ये क्या कर रहा है तू, ऊपर चढ़ रहा नीचे उतर रहा है। तो कि महाराज आप भूल गए, तो कि क्या भूल गए, कि आज तो आपने कथा में सुनाया था। क्या सुनाया मैंने, कि आपने नहीं सुनाया कि अगर आप पेड़ से नीचे भी गिरेंगे, नीचे तलवार भी होगी तो भगवान आपको बचा लेगा। तो वो याद आया महाराज को, हाँ मैंने आज कथा में सुनाया तो था। बोले हाँ मैंने सुनाया तो था। तो वो भाई बोले मैं बस वही प्रयोग कर रहा हूं। तो कि अच्छा, फिर महाराज ने कहा अच्छा तो तू ऊपर चढ़ता है तो उतरता क्यों है, गिरता क्यों नहीं है तलवार पर, उतरता क्यों है वापिस। तो वो बोले कि मैं गिरने के लिए चढ़ता हूं, पर फिर तलवार देखता हूं तो सोचता हूं कि वो आएगा कि नहीं आएगा बचाने के लिए। तो महाराज बोले वो नहीं आएगा, जहां पर भी संशय है वहां वो नहीं है, लेकिन जहां पर भी निश्चय है वहां वो बंधा हुआ है। भगवान ने कितनी बार मुरलियों में हमें कहा है, बाबा ने यूज मी, मैं आया ही आपके लिए हूं, आप मेरा उपयोग करें। ये शब्द साधारण शब्द है सुनने में, लेकिन अगर इन शब्दों को आप प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो जीवन अद्भुत बन जाएगा। आज देखिए, ये बरसों पहले मुझे ये सब अनुभव हुए, आज भी सुनाता हूं तो कितनी खुशी होती, मेरी आंखें भर आती आज भी सुनाता हूं तो बाबा के प्यार में। तो ऐसे जब बाबा के साथ के अनुभव होंगे तो जीवन कितना खुशनुमा हो जाएगा। और सफल जीवन क्या है, जो जीवन खुशी वाला जीवन है वही तो सफल जीवन है। बाकी पैसे तो बोसों के पास है, परिवार बोसों के पास है, साधन बोसों के पास है, प्रॉपर्टीज बोसों के पास है, लेकिन मेन है खुशी। जो अगर हम सफल जीवन माना, सदा खुशी वाला जीवन, और सदा खुशी वाला जीवन के लिए बाबा का ये जो यूज मी वाला चीज है ना, जो बाबा ने महावाक्य बोला है यूज मी, वो यूज मी को प्रैक्टिकल करके देखने का। उसके बाद तो बाबा ने इतने अनुभव करवाए, कैसे जैसे बताया ना बेन जी ने परिचय में, एक छोटे से गांव में जहां बस भी नहीं जाती, 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है उस गांव में, वहां से बाबा ने कैसे गीता पाठशाला में लाया, सब सेंटर, सेंटर, सब जोन, जोन मधुवन में लाके बिठाया, सेवा कराया। मैं ये सोचता था जब मैं गीता पाठशाला में जैसे ज्ञान मिला, और मैंने बताया ना श्री कृष्ण का साथी बनने का जो लक्ष्य मैंने निश्चित किया, मैं ये सोचता था कि मैं गीता पाठशाला में क्लास कर रहा हूं, श्री कृष्ण का साथी कैसे बन सकता हूं। श्री कृष्ण का साथी तो वही बनेगा कि जिसका पूरे ब्राह्मण परिवार के साथ कनेक्शन होगा, विश्व स्तर पर जिसकी सेवाएं होगी, वही तो विश्व स्तर का व्यक्ति बन सकता है ना, जिसका हरेक के साथ कनेक्शन हो, तो वो कैसे होगा। तो मैंने बाबा को यही कहा, बाबा कैसे कराना है क्या नहीं वो तो आप जानते हो, लेकिन मुझे श्री कृष्ण का साथी बनना है तो मुझे विश्व स्तर की कोई सेवा आप मेरे से कराओ कि जिससे मैं जुड़ू सबसे। तो मैंने कभी बाबा से सेवा नहीं मांगी कि मुझे ये सेवा चाहिए या वो सेवा चाहिए या ये सेवा दो। मेरी सेवाएं क्या रहती थी पता है, मैं सेंटर पर जब गीता पाठशाला में तो चलो कोई खास सेवा नहीं होती थी, लेकिन जब सेंटर पे आया, बड़ा सेंटर था, सब जोन था, तो वहां मैं रहता था, तो चूंकि शरीर लंबा है तो किचन से डिब्बे उतारना, सफाई करना, झांकियां सजाना, ये करना, ये मेरी सेवा होती थी। भले चार्टर्ड अकाउंटेंट था लेकिन सेवा मेरी ये होती थी। मैंने कभी सेवा नहीं मांगी, कभी किसी बहन जी से कोई सेवा नहीं मांगी, जो सेवा उन्होंने बोली हाँ जी करके कर लिया, बस उतना ही पार्ट प्ले किया। तो मैं बाबा को ये कहता था, बाबा पूरे विश्व के साथ कनेक्ट करा, आप जैसे भी करना हो पर कनेक्ट करो। और उस प्रोसेस में बाबा ने कैसे एक स्टेप बाय स्टेप अब लेता है या? हाँ, तो वो आता गया, और आते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि जब सारे विश्व के साथ बाबा ने कनेक्ट कर लिया, जो बहन जी गायत्री बहन जी बता रहे हैं गुड विशेष बैंक, वो भी एक अद्भुत था। बाबा परीक्षा भी लेता है, पास भी करवाता है। हर साल आपको पता है संस्था की अप्रैल में बड़ी मीटिंग होती है, उस बड़ी मीटिंग में पूरे साल के प्रोजेक्ट फाइनल होते हैं। तो 2010 की बड़ी मीटिंग थी। मैं मार्च के बाद अहमदाबाद गया हुआ था किसी जरूरी काम से। वो 10 तारीख को मीटिंग शुरू होनी थी और मैं 9 तारीख को सवेरे शांतिवन आया, तो आके मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया मीटिंग के लिए, वो फाइल लेने के लिए। तो जो फाइल दे रहा था उस भाई ने मुझे कहा कि इस बार तो आपको भी प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, आपका भी नाम एजेंडा में लिखा है। मैंने कहा मेरा नाम लिखा है? मैंने एजेंडा निकाल के देखा तो कि नई सेवा ललित भाई। मैंने कहा मेरा नाम कैसे लिख दिया, और बड़ी मीटिंग में कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना, और एक ही दिन, और मुझे तो पता भी नहीं। मैं सीधा निर्वेर भाई जी के पास गया क्योंकि निर्वेर भाई जी एजेंडा फाइनल करते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब इसमें आपने मेरा नाम लिखा है कि नया प्रोजेक्ट? तो हाँ, तो आप प्रेजेंट करना ना। मैंने कहा बात तो ठीक है लेकिन क्या प्रेजेंट करूं, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है कि क्या नया प्रोजेक्ट और क्या मैं प्रेजेंट करूं। बोले बस बाबा की याद में बैठो, बाबा कुछ होगा वो कराएगा, उन्होंने तो बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं जाके बाबा के रूम में बैठ गया। मैंने कहा बाबा अभी एक ही दिन बाकी है और ये सब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। बैठा बाबा की याद में, अचानक पूरा एक पिक्चर जैसे सामने आया कि शुभ भावना बैंक, बैंक खोलने का, कि एक बैंक खोलो और उस बैंक में सबकी गुड विशेष इकट्ठी करो। तो जैसा जैसा मन में वो विचार चलता गया मैं लिखता गया और एक घंटे में पूरा प्रोजेक्ट लिख दिया कि कैसे वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। और जब बड़ी मीटिंग में 2 दिन बाद मुझे सुनाना था तो मैंने वो सुनाया कि ऐसे ऐसे 100 करोड़ मिनट शुभ भावना बैंक हम खोलेंगे जिसमें 100 करोड़ मिनट इकट्ठा करेंगे। इस तारीख 24 जून से शुरू होगा, 15 अगस्त तक चलेगा और इस प्रकार से सब होगा। और वो प्रोजेक्ट सबको इतना पसंद आया कि पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जो है लोगों ने वो शुभ भावना का जो है खास प्रोजेक्ट चलाया। हर एक से 5-5 मिनट, 10-10 मिनट गुड विशेष इकट्ठी करके जमा किया, मुझे मैसेज भेजते थे, करते थे, मतलब सहज रीति से पूरे वर्ल्ड से मुझे कनेक्ट कर दिया। और उसके अलावा मुझे सेवा में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखा। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा मतलब इंडिया के सभी सेंटर्स की सभी बहनों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। हर एक बहन है मुझे जानती, मैं हर एक बहन को जानता, उनके साथ सेवा का, उनका सेवा करने का सौभाग्य मिला। भक्ति में लोग देवियों के दर्शन के लिए कितना पैदल जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं देवियों के दर्शन के लिए, और मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूं जो पूरे भारत से देवियां मेरे को दर्शन देने के लिए आती है। कितना भाग्यशाली हूं आप सोचिए कि ऐसा भाग्यशाली बाबा ने बना दिया कि जो है गायत्री नहीं तो देवियां दर्शन देने आती है सामने से, तो कितनी बड़ी बात जो है ये रहती है। मुझे नशा चढ़ता है उस चीज का कि देखो बाबा ने कितना भाग्य दिया है कि इन बहनों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और वर्ल्ड में भी, क्योंकि अभी आदरणीय रमेश भाई जी ने जब 2017 में देह त्याग किया, उसके बाद विश्व सेवाओं में भी जब अकाउंट्स फाइनेंस लीगल की बात आती है तो इन्वॉल्वमेंट रहता है पूरा उस प्रकार से। तो कहने की बात यह है कि बाबा की याद में वो शक्ति है जिस शक्ति से हमारे जीवन का हर परिस्थिति, हर चैलेंज, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम में सहजता से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रिसिटी है जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई देती है लेकिन उसका एप्लीकेशन कितना है। लाइट भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, गीजर भी चल रहा है, माइक भी चल रहा है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी से कितनी चीजें हो रही है हमारे सामने है ना। ये साइंस की शक्ति का प्रयोग हम अपने सामने देख रहे हैं। तो क्या साइलेंस की जो बाबा की याद की शक्ति है वो इसके मल्टीपल यूज नहीं हो सकते? उसका भी हर प्रकार का यूज हो सकता है, हर प्रकार, हर हमारी। मैंने तो जैसे आपको कुछ ही एग्जाम्पल बताया, अगर मैं अपना, मुझे ये नशा रहता है कि भागवत का एक अध्याय मेरे नाम से बना हुआ है, इतने बाबा ने अनुभव करवाए, मैं आपको सुनाने बैठू तो रात दिन निकल जाए, इतने इतने आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो बैंक गोडली बैंक का था हाँ तो वो तो नहीं ये बात ये है कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है तो आप बिजनेस आप में से बहुत से बिजनेसमैन भी बैठे होंगे तो एक ब्रांच या दो ब्रांच होती है उसमें भी कितनी बातें आती है लीगली फाइनेंस अकाउंट संबंधी और यहाँ तो कितनी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन और उसमें भी अकाउंटेंट हमारी बहन है जिनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं आठवीं पढ़ी हुई दसवीं पढ़ी हुई कॉलेज भी पढ़ी होगी पर अकाउंट तो कभी नहीं लिखा होगा उन्होंने उन बहनों से पूरा अकाउंटिंग करा के इतना बड़ा सब कारोबार करना बाबा ही करा रहा है लेकिन कैसे वो करा रहा है हम कैसे केवल कठपुतली बन के अगर हम रहें सबसे बड़ा समर्पण है बुद्धि का समर्पण हम अपनी बुद्धि को यूज करना बंद कर देवे और जो बाबा की दिव्य बुद्धि दी हुई है बाबा की श्रीमत मिली हुई है उसके आधार पर हम चले हम केवल कठपुतली बन जाए तो ये जीवन सफल ही होगा खुशमय होगा और हम बहुत आनंदित रह सकेंगे मैं समझता हूँ एक बज गया है तो टाइम हो गया है फिर भी दो पांच मिनट किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप कोई पूछ सकते हैं तो हाँ जी भाई साहब पूछिए जी नहीं ऐसा था भाई साहब कि मेरे को एक तो ये सफलता ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है वो तो एक छोटा सा बुक बनाया जिसमें हम क्या कर सकते हैं घर पर उसमें एक्सरसाइज के रूप में है कुछ चिंतन बिंदु लिखे हैं उसके आधार पर आपको ही एक्सप्लोर करना है अपने माइंड को और उसमें लिखना है फिल इन द ब्लैंक करना है वैसी एक पुस्तक है फिर दूसरा एक सदा स्वस्थ जीवन करके पुस्तक लिखी वो सदा स्वस्थ जीवन पूरे हेल्थ पर रिलेटेड है कि केवल भोजन के आधार पर सभी बीमारियां कैसे हम ठीक कर सकते हैं और उसका आधार एक ही था जो वो पुस्तक लिखते समय मैंने चिंतन था कि सतयुग में हम 150 साल तक बिना गोली दवाई के स्वस्थ रहते हैं 150 साल का शरीर होता है कोई गोली दवाई नहीं लेते हैं तो उसका आधार क्या तो वो जो अव्यक्त मुरलियों का वांछन और था उसके आधार पर वो पूरा पुस्तक लिखा था सदा स्वस्थ जीवन वो 6 भाषाओं में पब्लिश हुई है लेकिन सब अवेलेबल नहीं है और मैं भी फिर अकाउंट्स में ही इतना व्यस्त हो गया सब सेवाओं में कि उस तरफ फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया वो ठीक है जो छप दिया और जो हो गया वो हो गया उसके बाद में क्योंकि वो इतना फेमस हो गया था इस यज्ञ में वो इतना फेमस हो गया कि वो ललित थेरापी के नाम से फेमस हो गया संस्था में कि ये ललित भाई थेरापी वो जो मैंने भोजन सिस्टम पूरा बताया था लेकिन इतने फोन आने लग गए लोग इतने मिलने आने लग गए कि जो बाबा ने जो मुझे सीए बनाया वो सेवा इफेक्ट होने लग गए इसके कारण फिर इसलिए मैंने उसको साइड में कर दिया वो नेचुरोपैथी वालों को मैंने कहा नहीं जिसके लिए बाबा ने मुझे सीए बनाया पहले मुझे उसको जस्टिफाई करना है तो मैं फिर उधर टाइम देना मैंने बंद कर दिया तो ऐसे ऐसे थोड़ा लिखा था एक यूथ विंग में है शांति दूत पुस्तक है एक युवा शांति दूत कैसे बने उसका पूरा चिंतन वो बेंजी की गाइडेंस से पूरा लिखा था वो उसमें है फिर एक हमने दिव्य नगरी करके एक स्लम सेवा का प्रोजेक्ट शुरू किया कि स्लम के बच्चों को अहमदाबाद में हमने शुरू किया 4 साल पहले कि स्लम के बच्चों को सेंटर पर 1.5-2 घंटे के लिए बुला के उनके जीवन को पूरा चेंज करते थे अभी भारत में करीब 21 स्थानों पर ये सब चल रहा है ऐसे ऐसे हम कठपुतली बन के रहते हैं बाबा सामने परिस्थिति खड़ी भी करता है और अनुभवी भी बनाता है और उसमें सेवा भी करवा देता है इस प्रकार से
बहुत बहुत आभार
वो बहन जी पीछे कोई हाथ खड़ा कर
अच्छा कोई क्वेश्चन वाले है अच्छा आगे आके बोलेंगे तो अच्छा है
वो कह रहे हैं कि आपको ड्रीम में देखा था आप इसी प्रकार बैठ के लेक्चर दे रहे थे सपने में आए थे अच्छा अच्छा बहुत अच्छा
और कोई प्रश्न मैम
आप कभी भी आए, मैं शांतिवन में ही होता हूँ, कभी भी आप हमसे मिल सकते हैं। हाँ जी, हमारा मोबाइल नंबर नहीं लिख लीजिए, भले 800-300-9-001-2। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, सभी से कोई भी नंबर नोट किया हो तो, नहीं मुझे व्हाट्सएप कोई भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, फोटो भेजा, पीपीटी भेजा, कोई अच्छा माँ वाक्य भेजा, कुछ ये भेजा, वो आप कोई भी नहीं भेजे, क्योंकि मैंने अब एक चार लाइनें लिखी हुई है, हमारे मोबाइल में सेव किया हुआ है नोट्स में, कोई भी मुझे ये भेजता है मैं वो कॉपी पेस्ट करके उनको भेज देता हूँ कि कृपया कोई भी मुझे फोटो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कोई वीडियो ये मुझे नहीं भेजे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उन सबको देखूं। हाँ, आपको कोई प्रश्न है पूछे, कोई जानना है तो आप पूछे, उसका मैं आपको पूरा जवाब दूंगा, बाकी ये दूसरी चीजें मुझे भेजने का कष्ट नहीं करें आप। और फिर वो भेजने के बाद भी कोई मुझे भेजता है तो मैं उसको ब्लॉक कर देता, वो बुरा नहीं माने फिर आपको, मैं ब्लॉक कर देता हूं उनको जी। नहीं टाइम हो गया, नहीं वो तो जाएंगे तो आप शायद खाएंगे भी नहीं, आज छोड़ देंगे, चलो आज छोड़ देते हैं सब पूरा। नहीं उसमें भोजन में सिंपल था, बहुत सिंपल रूल्स है, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ये 5-7 प्रश्नों के ही उत्तर उसमें, पूरी 250 पेज की किताब है, उसमें केवल यही बताया हुआ है पूरा कि। और आप ये भी देखेंगे कि पूरी दुनिया में मनुष्य के अलावा 84 लाख योनियां कहते हैं, और उतनी होगी भी सही, जीव जंतु ये वो पशु पक्षी मिला के सैकड़ों हजारों लाखों हैं सब, लेकिन बीमार जो है स्पेशली मनुष्य ही होता है, दूसरे जो है वो बहुत कम बीमार होते हैं, और वो दूसरे होते भी हैं तो मनुष्य के कारण होते हैं, या तो मनुष्य का बनाया हुआ खाएंगे या मनुष्य के इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उसके कारण ही वो बीमार होते हैं, नेचुरल वे में वो कोई बीमार नहीं होते हैं कोई कभी, और वो बीमार अगर किसी कारण से हो भी गए तो उनके पास वो मैकेनिज्म है कि वो अपने आप को ठीक भी कर लेते हैं, उपवास कर लेंगे वो, ये करके वो अपने आप से ठीक हो जाएंगे। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए कि भाई नेचर के साथ हम अपने को मिला के रखेंगे, नेचुरल चीजें ज्यादा खाने का रखेंगे, अगर बीमारी हो गई कुछ तो उपवास सबसे अच्छी दवा जो है उपवास है, हम 24 घंटे 48 घंटे भी बिना पानी का उपवास करके उसको ठीक कर देते हैं, इस प्रकार की कोई बात होती है तो वो करते हैं, फिर चबा चबा कर खाने का वो पूरा उसका है, आपको चाहिए तो वो बुक मिल जाएगी, पूरी डिटेल है, या आप यूट्यूब पर मेरा नाम डालेंगे ना सदा स्वस्थ जीवन, तो वो यूट्यूब पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा उसका, क्योंकि वो पूरा 2.5 घंटे का क्लास है, और उसमें क्या होता है कि वो एक एजुकेशन है, वो मतलब उसको आधे ही समझने से वो काम नहीं करता है और कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं, इसलिए वो पूरा ही समझाना पड़ता है, जब कभी समझाते हैं तो 2-2.5 घंटा पूरा, और तब जाके वो पूरा क्लैरिटी होती है और विश्व। आज देखो आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कोई बनते हैं तो कैसे लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है, एक समझ के साथ होती है, केवल भावना से नहीं हो सकती, लेकिन साथ में समझ है तब जाके चेंज होती है। तो वो भी लाइफ अगर वैसा जीना है तो एक समझ के साथ होता है, केवल वो भावना या शॉर्ट टर्म बेसिस पर वो नहीं होता है। तो वो आप चाहे वीडियो भी देख लेवे, ऑडियो भी है उसका, और सदा स्वस्थ जीवन, सदा स्वस्थ जीवन वो। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू राधा बहन, गायत्री बहन, बहुत बहुत थैंक्स, आपने एक मौका दिया इन सब से मिलने के लिए बहन।
बहुत बहुत आभार आपके प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव जो बाबा अक्सर मुरलियों में बाबा हमें गाइड करते रहते हैं, तो यही समझ में आता है कि अगर बाबा जो बातें कहते हैं उन्हें हम रिलीजियसली अगर फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन कितना आगे बढ़ता है और हम सक्सेस की ओर हर क्षेत्र में आगे जाते रहते हैं। भल परिस्थितियां आती हैं तो बाबा एग्जाम भी लेते हैं, वो भी आपने बताया, तो हम जरूर इन बातों को ध्यान में आप सब रखते ही होंगे। मैं समझती हूँ आप सबके भी अनुभव होंगे, ऐसी कितनी ही भागवत और कितनी ही ऐसी कहानियां लिखी जाए ना, तो शास्त्र इसलिए बाबा कहते हैं ये हम सब बच्चों से ही बने हैं। तो बहुत बहुत आभार भाई जी।
सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर, सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया
ऊपर तेरे
हो गए